نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سورة مائدة کی آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کون اللہ تعالیٰ کس کو من اتبع رضوانہ جو اس کی رضا مندی کی تلاش میں رہتا ہے کس چیز کی رہنمائی کرتا ہے یا کس چیز کی راہ دکھاتا ہے سبل السلام سلامتی کے راستوں کی جب کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامتی کے راستوں کی گائیڈ لائن دے دیتا ہے اس کو اس پہ چلاتا ہے تو ہوتا کیا وہ یخرجہم من الظلمات الى النور پھر اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے اور یہ سب ہوتا کیسے بیزنی ہی اپنے ہی حکم سے اپنی ہی اجازت سے یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر جانا ہے اور ساتھ ہی فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور راہ دکھاتا ہے ان کو سیدھے راستے کی چھوٹی سی آیت نظروں کے سامنے آئی تو میں نے اس سوچ کے ساتھ پڑھی کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم ملے اور ہم سب یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا ملے سچ ہے نا کسی کو اس سے کوئی انکار تو نہیں ہے اس کو پانے کے بہت سارے طریقے ہیں اور انہی میں سے ایک طریقہ روزہ رکھنا بھی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر سال رمضان کا مہینہ ہمارے قریب لاتے ہیں تاکہ ہم اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اگلے سال تک کے لیے رہنمائی حاصل کر لیں تو آپ دیکھیے کہ رمضان جیسی کوئی عبادت نہیں ہے کیسے کوئی بھی عبادت آپ اور میں جو کرتے ہیں نا اس کا دوسروں کو پتہ لگ ہی جاتا ہے بس مغرب کی اذان کا وقت ہو اور آپ بیٹھے میں کوئی آپ کے بس مغرب کے شروع ہونے سے پہلے سے بیٹھا تھا اور مغرب قضا ہونے تک بیٹھا رہا تو اس سے آپ چھپا نہیں سکتے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ایسے ہی ہے نا ظاہر کرنی پڑتی ہے صدقہ دیتے ہیں کسی کو بھی نہ بتائیں لیکن کم از کم ایک کو تو پتہ چلتا ہے نا اور وہ کون ہے جس کو آپ دیتے ہیں ایک کو تو کم از کم پتہ چلتا ہے نا لیکن ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی اور وہ روزہ ہے میں آپ سے پوچھوں آج آپ روزے سے آپ کا دل کرے آپ جواب دیں آپ کا دل کرے آپ نہ دیں میں کہتی ہوں چلے میں دیکھتی ہوں کہ بھلا یہ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں تو میں آپ کے ساتھ سارا دن بیٹھی رہتی ہوں میرے پاس کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے اس بات کو جانٹنے کا کہ آپ ویسے ہی نہیں کھا رہی یا آپ روزے کی وجہ سے نہیں کھا رہی بات سمجھ گئے یعنی روزہ رکھ کے نہ کھانا یہ کوئی شرط نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹی سی سمبل ہے اس بات کی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی رضا کو مانے ہاں اس کے ساتھ پھر ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں یعنی کھانا پینا چھوڑنا رمضان کی غایت نہیں ہے رمضان کا مقصد روزہ رکھنا نہیں ہے ہاں آپ کہہ لیجئے کہ روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں تو بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ روزہ اپنی طرح کی ایک بالکل یونیک عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جیسے نیکی کا بیج ڈالنا ہوتا ہے نا اس طرح کا بیج رکھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس سیریز میں ہم نے اس پہ کئی دفعہ بات کی بلکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس سال کا جو پریپ رمضان کی یہ سیریز چل رہی ہے اس میں جو انکلائنیشن رہا میرا اپنا وہ یہ رہا کہ روزہ ہماری عادتوں کو بدلنے آتا ہے ہماری مرضیوں کو چھوڑنے آتا ہے چھڑاؤ اپنی مرضی سے تم نہیں کچھ کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق نہ دے اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کے پیچھے صرف کھانا پینا چھوڑنا تو نہیں تھا نا یہ تو ایک مکمل ٹریننگ سیشن تھا बहुत खूबसूरत चीज़ है, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमारे लिए जो खैर और फ़ायदे रखे हैं वो भी हमसे अब ढके छुपे नहीं हैं। इसी सीरीज़ में एक लेक्चर पूरा सिर्फ इस बात पे हुआ था कि रोज़े के फ़वाद क्या हैं और समरात और बरकात कह लीजिए वो क्या हैं। अब ये सारा कुछ हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप और मैं अगर देखें, आज मैं और आप जो मुसलमान जिस दौर से गुजर रहा है, ये रमज़ान किस तरह गुजारता है, फिर दोबारा पीछे जाना पड़ता है। हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, सहाबा भी रखते थे, हम रमज़ान में नमाज़ें पढ़ते हैं वो भी रख, और हम नेकियों के जो काम करते हैं वो भी करते थे, बट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट वो फ़र्क है। सहाबा कराम के रोज़े उनको बाकी 11 महीने तक इतना एनर्जेटिक कर देते थे, एनर्जी इनके अंदर आ जाती थी, ताकत से भर देते थे कि फिर गज़वे बदर भी रमज़ान में लड़ी गई, तो फतह मक्का भी रमज़ान में हुई। यानी कभी एक सहाबी का आपको जुमला नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी रमज़ान है छुट्टियाँ दे दें, अल्लाह के नबी किसी गज़वे में ना भेजें, अल्लाह के नबी अभी ठहर जाएँ ज़रा, बस थोड़ा सा हम रेस्ट कर लें। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ थी कि वो 24 घंटे तैयार रहते थे। मुझे ऐसे लगता है कि जो रमज़ान के महीने को खो देता है ना, वो पूरा साल नेकियों की तौफीक को खो देता है, सिवाय वो चंद फ़राइज़ और वो चीज़ें जिसके बगैर हमारी गुजर ही नहीं है। आप में से कितने ही साथी इस बात की गवाही देते हैं कि वो पहला मौका किसी रमज़ान का ही था जब आपके दिल में इस किताब को पढ़ने की ख्वाहिश आई? हाथ खड़ा करेंगे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद अपने ऊपर लेके हमेशा बताती हूँ, वो एक रमज़ान था जिसने मुझे इस किताब की तलब दी। आखिर इसमें है क्या, मेरे जहन में एक बिग क्वेश्चन मार्क था, आखिर इसमें है क्या, क्योंकि जो इसके करीब जाता है वो बदल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को दीन के लिहाज से एक ऐसा बाग बना दिया, एक ऐसा चमन बना दिया कि जिसमें इंसान की रूह को ग़िज़ा मिलती है। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को दो हिस्सों में जोड़ा है ना, बदन और रूह। बदन वो है जो आपको मेरा और मेरा आपको किसी हद तक दिखता है, कद काठ क्या है, हमारा चेहरा कैसा है, हमारे हाथ कैसे हैं, हमारी स्किन कलर कैसी है, और सब कुछ जो ऊपर है। एक्सरे मशीन में खड़े हो जाएं तो आपका अंदर भी नज़र आने लग जाएगा, MRI मशीन में अल्लाह ना किसी को ले जाए अगर उसमें जाएं तो वो आपकी हड्डियों के अंदर की भी चीज़ें देख लेंगे ना। ये एक हिस्सा है, और ये हिस्सा किस चीज़ से पनपता है, दुनिया की चीज़ें खा पी के। नाश्ता करके आए होंगे, जो पराठे खा के आए हैं वो सो चुके होंगे जाके बाहर, उनको प्यास लग रही होगी, और जो चाय पी के आए होंगे उनको वॉशरूम की ज़रूरत होगी। यानी सारा दिन आप देखिए कि हम बॉडी के जिस पार्ट को टैकल करते हैं, जिसकी हम खिदमत करते हैं ना, वो हमारा जिस्म है। और ये हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने इंसान को नुतफे से पैदा किया है। जब नुतफे से अल्लाह सुबहान तआला ने पैदा किया, और नुतफा कहाँ से बनता है, उस खुराक से जो मट्टी से आती है, और वैसे भी आदम की तख्लीक में अल्लाह ताला ने मट्टी को ले लिया, सबको पता ये बातें कोई बड़ी बात नहीं। तो गोया के हमारे वजूद का एक हिस्सा जो मट्टी से बना हुआ है, उसके अंदर रगबत मट्टी की है। हम इस मट्टी, इससे मिली हुई, इससे निकली हुई मट्टी वाली चीज़ों को पसंद करते हैं, और बाय द वे डायमंड भी मट्टी ही है, हीरा भी मट्टी है, सोना भी मट्टी से ही निकलता है, चांदी भी मट्टी से ही निकलती है। इसी तरह हमारे वजूद का जो दूसरा हिस्सा है जिसको रूह कहते हैं, फनफख तुफी ही में रूह ही, फिर मैंने फूंक दी उसमें अपनी रूह। ये रूह जो है ना, ये हमें नज़र नहीं आती, किसी गैजेट में नहीं आती, और क्यामत तक नहीं आएगी। हमारा ईमान है कि मशीनों की मशीनें ईजाद हो गई। आज आप देखिए, पहले एक दौर में सिर्फ एक्सरे ही होता था, अब तो कई किस्म की चीज़ें आ गई। और इवन आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, और यहाँ तो भी मुझे नहीं इतफाक हुआ, लेकिन अमेरिका में अब तकरीबन हर एयरपोर्ट पे उन्होंने एक सिलेंडर सा लगाया होता है, आप उसके अंदर जाते हैं, खास फुटस्टेप यूँ रखे होते हैं, आपने बिल्कुल उसके ऊपर पाँव पे पाँव रखना होता है, और आपके हाथ ऐसे, यानी आपकी बॉडी कहीं से टच ना करती हो। फिर उनका एक ऐसे जैसे स्लाइडिंग डोर होता है ना, तो यूँ आके ना आपको घूम के पूरा देख के, फिर अगर वो कह दे जाएं, सामने छोटी सी स्क्रीन होती है इसी तरह की, और उसके ऊपर आपकी बॉडी पे पैचेस नजर आते हैं, आपको खुद भी दिखते हैं, कहीं उनको गहरा पैच दिखे यानी येलो कलर होता है, तो फिर वो उस हिस्से की तलाशी लेते हैं। कभी पांच दफा बंदे ने कोई क्लिप लगाया हुआ है तो वहां पैच आया, तो वो टच करके देख लेते हैं किट्स होके। 90% अब एयरपोर्ट्स पे यही है, अमेरिका में कोई बंदा नहीं आपको दिखता, बस मशीनें हैं। उस मशीन की खूबी क्या है जो अब आपको बताने लगी हूँ, और आप हैरान हो जाएंगे। हाँ, आपके पास इजाज़त है अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इनकार कर दें कि मैंने इसमें से नहीं गुजरना, आप मुझे मैनुअली ऑब्जर्व कर लें। आपके जिस्म के अंदर अगर आपने कोई चीज़ छुपाई हुई है ना, वो भी इनको नज़र आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि दुनिया में अगर ऐसा हो गया तो, क़यामत के दिन अगर हो गया तो क्या बड़ी बात है। तो कई लोग नहीं करते उसको पसंद, कई लोग कहते हैं अंदर उनको पूरी आपकी बॉडी दिख रही होती है, वल्लाहु आलम, लेकिन ऐसी चीज़ें मौजूद है ना। हमारा ईमान है कि क़यामत तक कोई ऐसी मशीन नहीं ईजाद होगी जो आपकी मेरी रूह किसी को दिखा दे, क्योंकि रूह जो है ना ये गैर मरई, रई रुयत क्या होता है, देखना, यानी रूह एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख नहीं सकते ना दिखा सकते हैं। अब वो कहाँ से आई, वो आसमान से आई। आप कह लीजिए रूह मेरे नम्रे रब्बी, सीधी सी बात है, सूरत बनी इसराइल में इस सवाल का जवाब दे दिया गया कि रूह तो अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म क्या है, फ़इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, सीधी सी बात है। तो जब अल्लाह का हुक्म है तो वो गैर मादी चीज़ है ना। अब आप कहते हैं अपने बच्चे को दूध पियो, तो आप ये हुक्म दिखा तो नहीं सकते, अपनी आवाज़ सुना सकते हैं कि इस तरह कहा था, लेकिन फिजिकल फॉर्म में आप उसको नहीं देखते। तो रूह जो है ना वो गैर मरई है और वो आसमान से आई है, अल्लाह ने उसकी निस्बत इज्जत देने के लिए अपनी तरफ कर ली। तो जिस तरह रूह आसमान से आई है ना, उसकी खुराक भी आसमान से आई है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, बेशक हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। सबको पता है सूरत क़द्र में आगे क्या आता है। अब आप देखिए कि वो कुरान भी आसमान से आया। आपकी मेरी बॉडी जिस्म जो दिन रात 24 घंटे खाना ही नहीं है, सिर्फ इसमें सॉफ्ट कपड़े, काउचेस, ये कुशन, ये किसको सर्व कर रहा है, मैट्रेस, पिलोस, आपकी नज़रों के हुसन के लिए खूबसूरत बर्तन, खूबसूरत पर्दे, ये सब जो भी है ना, बल्कि ए टू जी अगर आप कह लें कि एक बिग यूटिलिटी स्टोर। मैं अक्सर सोचती हूँ, यहाँ भी बहुत हैं, दुनिया में हर जगह ही होते हैं, सैम्स नाम का एक बिग स्टोर है अमेरिका में, इसी तरह वॉलमार्ट्स हैं, खे मार्ट्स हैं, तो वो इतने बड़े हैं कि आप अंदर घूम फिर लें, पूरे शहर आबाद है। तो मैं कभी वहाँ जाऊँ तो मैं ये सोच जरूर रखती हूँ कि ये ए टू जी सर्व कर रहे हैं तो इंसान के जिस्म को कर रहे हैं। आप जब ग्रोसरी लेकर आते हैं और आपका जो 5-6 बैग गाड़ी से निकलते हैं, आप एक एक चीज़ को गिन लें, वो टॉयलेट पेपर से लेकर वो आपके दूध जब्बे और एवरीथिंग, एवरीथिंग इज सर्विंग टू योर और माई बॉडी, इतना इहतमाम। बट जो हमारी रूह है ना, उसकी ज़रूरत क्या है, कुरान, क्योंकि जो जहाँ से आया होता है ना वहीं की चीज़ों को पसंद करता है। जैसे माशाल्लाह हमने यूरोप में भी जलेबियाँ बना ही ली, कितनी हैरतनाक बात है कि जहाँ जलेबियाँ आ गई और कोई कानून नहीं पास हुआ आज तक कि जलेबी बैन है। आम हमारे सारी दुनिया से मज़े के आम हैं, लेकिन हमें कोई नहीं रोक सकता कि आप पाकिस्तानी आम ना खाएं। आप चाइनीज़ एक दिन खा लें, दूसरे दिन इटालियन खा लें, तीसरे दिन आप कोई तीसरी चौथी बला खा लें, अगले दिन क्या दिल करता है, दाल चावल, आलू मेथी, पुलाव, बिरयानी। हमारे खमीर में जहाँ का बंदा होता है ना, उसको वहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं। बस यही कह लें, हमारी रूह ऊपर से आई, उसको ऊपर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे लड़कियां 10 साल भी ससुराल में रह लें, फिर भी याद में कहीं आता है अपना घर, माँ का घर, छोटा सा खुड्डा भी होगा ना, कहेंगे ये उससे बहुत अच्छा जो महल है ना। ये इंसान की तबीयत के अंदर चीज़ें आती हैं। तो जब हम कुरान से जुड़ते हैं तो गोया के हमारी रूह को अपनी मदर लैंड की याद आती है। आपको अल्लाह के दीन की महफिलों में सुकून महसूस होता है, और आप में से जो सिस्टर्स माशाल्लाह कुरान की क्लासेस की बाकायदा स्टूडेंट है, आप उस जज्बे को महसूस करती हैं जो तफसीर सुनते वक्त होती है। मुझे पढ़ाते हुए जो फील हो रहा होता है, मैं अक्सर खुद से भी कहती हूँ, कभी मौका मिले तो क्लास को भी कहती हूँ, कि ये सब सोच रहे हैं कि इनको बहुत समझ आ रहा है और इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, बट जो मुझे पढ़ाते हुए महसूस हो रहा होता है, मैं वहाँ बैठ के भी कहती हूँ अल्लाह मैं कभी भी इनको फील करा ही नहीं सकती कि मुझे क्या लग रहा है। मैंने अलबिदाया और नहाया थी किताब गालिबन, उसमें एक मौर में पढ़ा था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे ना, तो उनके चेहरे पे एक जमाल और एक नूर और एक ऐसी कैफियत आ जाती थी कि नज़र नहीं ठहरती थी, और वो अपने चेहरे पे निकाब डाल लेते थे, यानी अल्लाह के कलाम की लज्जत। मैं जब तफसीर पढ़ाऊँ तो मुझे कभी कभी याद आता है कि वाकई मूसा, आपने तो अल्लाह के साथ कलाम किया है, हम तो उसके कलाम को पढ़ते हैं। हमारे इस गुनाहगार दिल पर जो असर हो रहा होता है, हर एक जुमले के बाद दिल कर रहा होता है स्टूडेंट्स को बंदा कहे कि वैसे मैं आपको बता नहीं पा रही है क्या, मैं आपको वो बता ही नहीं सकती जो मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये कुरान हमारी डायरेक्ट जाके रूह से सिंकनाइज हो जाता है। आप अपने सेल फोन को लैपटॉप के साथ चार्ज करें तो वो क्या पहले आते ही पूछता है, डू यू वॉन्ट योर फोन टू बी सिंकनाइज विथ योर लैपटॉप। इसकी तस्वीरें उधर, उसकी ऑडियो उधर, टिक 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 चलती रहती है, और जो लोग करते हैं उनको पता है ओके कर दें तो सारे फ़ोन के अपडेट इसमें आ जाए। एग्जैक्टली कुरान जब आपकी मेरे सामने खुलता है तो ये हमारा सिंकनाइजेशन होता है। अल्लाह ताला ने रमज़ान को शाहरुल कुरान भी कहा, रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अब आप देखिए कि जब कुरान के साथ आपका मेरा ताल्लुक़ जुड़ता है ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं कलाम आखिर। रमज़ान का महीना जिस रूह के साथ हमारे पास आया था ना, वो ये था कि हम इसका बेहतरीन फ़ायदा लें, कुरान के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक़ हो जाए, और ख़ास तौर पे शुरू में नहीं आखिर की 10 रातों में। चंद मिसालें आज आपको देना चाहती हूँ इस सोच के साथ कि अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन शुरू तो होना है ना। तो हमारे असलाफ आखिरी 10 दिन में क्या करते थे, क्योंकि जब वो 10 दिन शुरू होंगे तो उससे पहले सुना होगा तो समझ आएगी ना, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हम अपने असलाफ की जो बातें पढ़ें, इस पूरी सीरीज़ में मैंने 3 मुकामात पे असलाफ की बात की है। एक तो टॉपिक ही ये था कि सहाबा कराम का रमज़ान या असलाफ का, फिर इसी तरह हमने एक दूसरे लेक्चर में देखा था कि सहाबा कराम का कुरान के साथ क्या ताल्लुक़ था। लेकिन थोड़ा सा आज मेरा दिल चाह रहा है कि कम अज़ कम आपके लंदन या यूके की रेंज के आखिरी लेक्चर में असलाफ का आखिरी अशरा भी आपको सुना दूँ। बस उसको सामने रख के आज के मुस्लिम को एंड पे टच करेंगे कि वो क्या करते हैं, और वो सुन के तो फिर वैसे उसमें कोई नई बात तो होनी नहीं, हम सारे ही जानते हैं, हैं? तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि रमज़ान के साथ जो कुरान का ताल्लुक हम देख रहे हैं, हमारे असलाफ का क्या ताल्लुक था। पहली बात यह है कि सारा ही रमज़ान उनके लिए बड़ा कीमती होता था। एक बहुत समझदार ताजिर की तरह वो एक एक दिन इस्तेमाल करते थे, एक एक घड़ी इस्तेमाल करते थे। मैं इसी सीरीज़ में एक लेक्चर में सुना चुकी हूँ कि किसी ने कहा कि आप रमज़ान में इतना क्यों बिजी हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसके एक एक लम्हे का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। फालतू बातें नहीं करते थे, कलीलुल धाम कलीलुल मनाम कलीलुल इख्तलात, कम बोलते कम सोते कम खाते और लोगों से कम मिलते, ये उनकी एक आदत थी। तो ख़ास तौर पे जब आखिरी अशरा आता जिसमें लैलतुल कदर भी है, जिसकी एक रात 1000 रातों से बेहतर है, और अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो सुबह फजर तक सलामती की रात है, तो सहाबा कराम को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। सही बुखारी आयत 1901 नंबर में अबू हुरैरा से हमें मिली कि आपने फरमाया कि जिसने शब कदर में ईमान और हसूल सवाब की नीयत से क्याम किया उसके पिछले तमाम गुना बख्श दिए जाएंगे। अब आप देखिए ज़रा सा सोचें, एक रात की इबादत से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। इमाम शाबी रहमहुल्ला नाम सुना होगा, मुहद्दिसीन में इनका नाम आता है, लैलतुल कदर के बारे में कहते कि इसकी रातें इसके दिनों की तरह, यानी लैलुहा का नहारीहा वाली कैफियत है। जबकि इमाम शाफी कहा करते कि मैं पसंद करता हूँ कि इसके दिन को भी इसी तरह इबादत और कोशिश और मेहनत हो जैसे कि इसकी रातों में की जाती है। नोट करें, हम अगर बुरी रात जाग जाएं तो हम बुरा दिन सोते हैं। कई लोग ऐसे सारी रात शबीनों में जागते हैं, हो सकता है नमाजें भी आखिरी वक्त में मिलें जोहर असर की, क्योंकि सोते रह गए। इमाम शाफी कहते हैं कि मैं सिर्फ लैलतुल कदर की रातों में नहीं, इसके दिनों में भी मेहनत और कोशिश करना पसंद करता हूँ। और बाज़ असलाफ ऐसे थे कि लैलतुल कदर का इस्तकबाल इस तरह करते जैसे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया जाता है। चुनाचे वो दिल की तैयारी के साथ जिस्मानी तौर पे भी तैयार होना पसंद करते थे। कैसे, अब ये भी सुनिए, हमें ये तो पता है कि मेहमानों के आने पे कैसे तैयार होना है और ख़ुद कहीं जाना है तो कैसे तैयार होना है, लेकिन कुरान और दीन और इबादत के खुशू के लिए तैयारी, ये हमारे सहाबा को पसंद थी। हमारे नबी के सहाबा और उसके बाद के लोग थे, मसलन इब्ने जरीर, बहुत प्यारी तफसीर है इनकी, वो क्या करते थे, रमज़ान की आखिरी रातों में हर रात गुसल करना पसंद करते थे। बिलीव मी, मैं अभी आपको भी बताऊं, ये एक फितरी सी बात है, और मैं हमेशा साथियों को कहती हूं और आपको भी टिप दे जाऊं, आप अभी से नियत कर लें, रोज़ गुसल ले करते ही होंगे, मैं नहीं कहती नहीं करते, बट आपने जहां जहां दौरे कुरान के लिए आना है, दौरे कुरान पे आने से पहले अपने ऊपर इस एक महीने में गुसल शावर फर्ज कर लें। ना नींद आएगी ना ऊँग आएगी और ऐसे निकाहत नहीं होगी। गुसल करने से क्या होता है, ऐसे नहीं लगता फ्रेश हो गए, नया बन आ जाता है, दो डब्बे, वेरी गुड, यानी सिंस को भी वॉश करता है और प्लस स्पिरिचुअली भी फील अपलिफ्टेड। آپ دیکھیں ذرا سی اسمیل آتی, کوئی گلے بھی ملے تو کتنی بیڈ اسمیل لگے گی, تو آپ شاور لیں. تو یہ بزرگ کیا کرتے تھے, امام نخعی تھے, ایک بہت ہی بڑے معروف امام تھے, آخری عشرے کی ہر رات کو غسل کرتے. اور اسلاف میں ایسے بھی لوگ تھے جو غسل بھی کرتے اور خوشبو بھی لگاتے, اور خاص طور پہ اس رات میں زیادہ خوشبو لگاتے جس رات ان کو سمٹمز نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے. آپ کہتے ہیں نیند ہی بڑی آتی ہے, ہمارا لائف سٹائل ویسا نہیں رہتا. اسی طرح ثابت البنانی ایک بزرگ گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ تمیم داری صحابی تھے رضی اللہ عنہ, ان کے پاس ایک حلہ تھا, حلہ کہتے ہیں ڈریس کو, آؤٹ لیٹ, جو انہوں نے 1000 درہم میں خریدا تھا, اور وہ اسے اس رات کو پہنتے جس رات امید ہوتی کہ آج لیلۃ القدر ہوگی. اسی طرح حبیب بن ابو محمد رحمہ اللہ اور ان کی بیوی دونوں بڑے عابد اور زاہد تھے. جب رمضان کی آخری راتیں آتی تب ذرا سنیے بیوی کیا کہتی ہیں, لکھ لیں آپ بھی اپنے شوہروں کو کہا کریں, کیا کہتی ہیں اپنے زوجے محترم سے, کہتی رات چلی گئی اور ہمارے سامنے بہت طویل راستہ ہے. یعنی رات تو ایک تھی, چھوٹی سی چلی گئی, ہمارے پاس ابھی زندگی کا سفر بہت ہے اور زیادہ راہ تھوڑا ہے. اسلاف یعنی سلف صالحین کے قافلے ہمارے آگے چل پڑے اور ہم پیچھے رہ گئے. یعنی ساری رات عبادت بھی کرتے اور پھر بھی کہتی کہ ابھی زیادہ راہ جمع نہیں ہوا. آج ایسی بیویاں ہیں جو عبادت کے لیے شوہروں کو جگائیں, جن کو یہ پتا ہو کہ آخرت طویل ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اور وہاں کا زیادہ راہ آج میں نے یہاں لینا ہے. اللہ کرے آج مجھ سمیت آپ سب بہنوں کے دل میں یہ تڑپ آ جائے, اور ہم سب کے شوہروں سمیت دنیا کے ہر مسلمان مومن مرد کے دل میں آ جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو راتوں کو اٹھانا ہے. اور نہیں رغبت تو حدیث سن لیجئے, ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس مرد پر رحم کرے. دیکھیے دعا مل رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرد کے لیے دعا ہے جو رات کو اٹھے, نوافل کو ادا کرے اور اپنی بیوی کو جگائے, اور وہ بھی نوافل ادا کرے اور بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اس کو جگائے. بتائیں حضرات, آج رات اگر آپ کے میاں آپ کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے تو آپ کیا کریں گے؟ اور اپوزٹ بھی ہے, اللہ رحم کرے. دیکھیے یہ ہے اصل میں کیوپڈ کپل, یہ پیار ہے. یہ کوئی پیار نہیں ہے ویلنٹائن ڈے پہ پھول دے دیا اور نہیں دیا, اور اینیورسری پہ رنگ دی نہیں, کیونکہ دوستوں کو بتانا ہوتا ہے نا, بس یہی مسئلہ ہے, ورنہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اصل پیار یہ ہے, فرمایا اللہ رحم کرے اس بیوی پر جو رات کو اٹھے تو خود اٹھے, نفل پڑھے, پھر شوہر کو جگائے, اور اگر وہ نہ جاگے تو اس کے چہرے پر چھینٹے مارے. ابو داؤد اور نسائی کی یہ روایت ہے 1308 اور 205 نمبر کی. اب مجھے بتائیے کہ آج رات آپ یہ تجربہ کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا بالله. آج تو بالکل نہ کریے گا, کیونکہ آپ میں سے سب کے ہسبینڈ کو پتا ہے کہ آپ درس پہ گئی ہوئی ہیں. اس کے لیے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے یہ چیزیں ایک دم نہیں ہوتی, پہلے آپ یہ حدیث سنائیں, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر ایکٹیویٹی کریں, پہلے ان کو موقع دینے دیں کہ 2-4 باری وہ آپ کے منہ پر پانی ڈال لیں, پھر کسی دن آپ بھی لاڈ دکھا دیں. یہ پیار ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں اللہ یہ گھروں کا سکھ دکھائے, اپنی بیٹیوں کے اپنے بیٹوں کے ایسے جوڑ ڈھونڈیے کہ جو یہ لاڈ کرنے والے ہوں, جس میں واقعی وہ کہے کہ میں حدیث کے طور پہ کر رہا ہوں. اچھے ہسبینڈ کہتے ہیں آپ مجھ پہ پانی ڈال دیتی, آپ اٹھی آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا. اچھی بیوی اگلے دن اس پہ ناراض ہوتی ہیں کہ یہ آپ خود اٹھے مجھے کیوں نہیں اٹھا دیا, مجھے پتہ ہے آپ میرے سے بڑی جنت میں جانا چاہتے ہیں اس لیے مجھے نہیں اٹھاتے. یہ لاڈ تو دیکھیں, یہ پیار ہے. ہم نے پتہ نہیں کن چیزوں کا نام زندگی رکھا. تو بہرحال یہ کہ ہمارے اسلاف آخری عشرے میں خاص طور پہ عبادت, تلاوت, قیام اللیل اور سخاوت رکھتے, اس کے باوجود بین الخوف والرجا, خوف اور امید کے بیچ میں لٹکے رہتے کہ نہ جانے اللہ نے یہ قبول بھی کیا کہ نہیں, کیونکہ جب تک اخلاص نہیں ہوگا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور اخلاص جیسی غیر معمولی اور لطیف اور نایاب چیز پانی سب سے مشکل ہے. عبادت بڑی آسان ہے, ٹی وی اسکرین پہ آ کر شبینے کے نام پہ خوبصورت چوغا پہن کے 10 دن میں پورا قرآن پڑھ دینا, اٹس ناٹ اے بگ تھنگ. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کام جس میں ریاکاری نہ ہو, جس میں دکھاوا نہ ہو, جس میں تکبر نہ ہو, یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک اور کام جو ہمارے اسلاف کرتے تھے, وہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے خوف سے کانپتے تھے, خشیت الہی کا شکار ہو جاتے تھے. وہ اس طریقے سے محسوس کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, جوں جوں رمضان اپنے آخر کی طرف پہنچتا ان کو حسرت ہوتی کہ ہم نے اس خوبصورت مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جب فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اور زیادہ نیکی کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اچھا اب جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ہم اس کا بہترین استعمال کریں گے. اسی طرح ابو قلابہ رحمہ اللہ تھے، رمضان کے آخری دنوں میں اپنی سب سے خوبصورت لونڈی کو اس امید پر آزاد کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمیں جہنم سے آزاد کر دے گا. اب آپ امیجن تو کریں ذرا کہ ایک طرف آپ اپنی من پسند چیز اللہ کی طرف ڈالتے ہیں اور دوسری طرف وہ آپ کو آگ سے آزاد کر دے، کون فائدے میں رہا؟ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ جنت کے تذکرے کرتے تھے اور جہنم کا خوف ان کو ہوتا تھا. وہ ذرا سا دنیا میں اپنے آپ کو انوالو دیکھتے اور ادھر ذرا ان کا دل لگتا وہ فوراً جا کر جنت کی چیزیں دیکھتے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے. کیا کہتے کہ ہم دنیا کی چیزوں میں کھو گئے، ہماری جنت تو ہمارا انتظار کر رہی ہے. اور ذرا کسی نیکی کو حقیر جان رہے ہوتے، پیچھے کرتے، تو ان کو کیا احساس ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دیں گے اس دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے، تھوڑے سی چیزوں کے لیے. آپ دیکھیے کہ نیکی جب تک شوق اور لگن سے نہ کی جائے اس میں رنگ نہیں ہوتا، اس میں خیر نہیں ہوتی. تو جب آپ اور میں جنت کے تذکرے اور جہنم کی باتیں کریں گے نا، تو اس کے فوراً بعد اس دنیا کے اندر سے ہمارا دل جو ہے وہ اٹھنے لگے گا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ کیا ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. میں آپ سب کو جو چیز اس کے ساتھ ساتھ دوں گی اپنے ساتھ، وہ کیا، اس دفعہ ابھی سے گھر میں یہ باتیں شروع کر دیں، ابھی سے یہ باتیں کریں، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ آپ اور میں مل کر اس سال کے رمضان کو کیسا گزاریں. یہ کیا بات ہے، آپ کہیں اور آپ کے بچے کہیں، آپ کی کچھ اور مصروفیات اور بچوں کی کوئی اور. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہے نعمت فائدہ نہیں ہو رہا. لا ينفع ذا الجد منکل جد، نفع والے، اولاد والے، مال والے کسی چیز سے فائدہ لے نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. بعض دفعہ دل جلتا ہے، دل کڑتا ہے کہ اولاد ہے پر وہ غم خوار نہیں ہے، وہ ساتھی نہیں ہے، وہ تنہائیوں کی ساتھی نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ ہم دکھی ہیں تو ہمیں کسی کی ضرورت ہے، ہم بیمار ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی دوا دے دے، ہم کہتے ہیں سر میں درد ہے کوئی آئے اور ہمارا سر دبائے. دکھوں سے زیادہ خوشیوں میں اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایم آئی رائٹ اور رونگ؟ دل چاہتا ہے کہ جو خوشی ہم پا رہے ہیں وہ دوسرے بھی پائیں، جو مزہ ہمیں آ رہا ہے وہ دوسروں کو بھی آئے. تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ باتیں کیا کریں، آپ مل کے بات کریں، کس طریقے سے کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہا کرتے تھے، رمضان کی آخری رات میں آواز لگاتے اور کہتے، کون ہے جس کے اعمال قبول ہیں، یعنی پورا مہینہ عبادت کی ہے، کسی کو اوپر سے اگر آ گئی آواز، یعنی مراد ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہو گئیں، تو ہم اس کو مبارکباد دیں. اور ساتھ ہی کہتے تھے، کون ہے وہ جو محروم ہے، یعنی رمضان تو آیا لیکن وہ اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا، ہمیں بتائے تاکہ ہم آ کر اس کے پاس تعزیت کریں. کبھی ہم نے جا کے تعزیتیں کی ہیں؟ حضرت علی اصل میں یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ دنیا میں پتہ چل جائے کہ ہم میں سے کون کامیاب ہے اور کون نہیں ہے. عبادت کی قبولیت ہی اصل بات ہے. بڑی بڑی لمبی چوڑی باتیں کر لینا اور سنت کی گرائی نہ اس پہ لگی ہو، یہ قبولیت نہیں ہے. اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، تو وہ نہ ہو جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا. اور کم من قائم، کتنے کھڑے ہونے والے ہیں کہ جن کو تکلیف اور سحر یعنی تھکن کے سوا کچھ نہیں ملتا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ عید کے دن دکھی نظر آتے تھے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، میں اس کی اتفاق نہیں کرتی، لیکن وہ ان کا اپنا تقویٰ تھا، ہورا تھا. لوگ ان سے کہتے کہ آج تو مسرت کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، تو کہتے آپ نے سچ کہا ہے لیکن اصل میں ایک غلام ہوں، اور میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے عمل کروں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اس نے میرے عمل کو قبول کیا ہے کہ نہیں. بات سمجھ ہے؟ عید کے دن کھانا پینا خوش ہونا اچھی بات ہے، لیکن جس کو اپنے گناہوں کا غم لگا ہوتا ہے نا، وہ پھر بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا. لوگ بیٹھ کے ذرا دیکھے سناتے ہیں، اتنے اعتکاف کیے. وہیب بن ورد ایک بزرگ ہیں، ایک دن دیکھا کہ عید کا دن ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہنے لگے اگر ان کے روزے قبول ہو گئے ہیں تو یہ شکر کرنے والوں کا وتیرہ نہیں کہ خوشی کے موقع پہ اس طرح سے شوخی میں آ جائیں کہہ لیجئے، اور اگر ان کے روزے قبول نہیں ہوئے تو ڈرنے والوں کی بھی یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ خوش ہوں. صحابہ کرام جو رمضان کے نام پہ کرتے تھے، آخری عشرے میں کریں یا پورے رمضان میں کریں، وہ سب کو پتہ ہے. ان کی زندگی میں یہ خشیت بہت تھی کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ روزہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. بٹ افسوس کی بات کیا ہے کہ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں بٹ ہمارا دل نہیں بدلتا. فرسٹ تھنگ جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ آج کا مسلمان رمضان کے ناطے سے کیا کرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان سے خوف زدہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہائے رمضان آ رہے، ہائے روزے آ رہے ہیں، خوشی سے کہیں بعد میں کہ جو بھی، لیکن ایک چھوٹا سا خوف ہوتا ہے، ہائے اس گرمی بہت ہے، ہائے بڑے لمبے دن ہیں. جبکہ صحابہ کرام اور ویسے بھی قرآن ہمیں جس چیز کو حکم دیتا ہے، وی شوڈ وارم ویلکم. پھر اس طرح سے آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو رمضان کے آج کے مسلمان کی زندگی میں دیکھی گئی ہے، بہت غور سے سننے کی بات ہے، ہم رمضان سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ہی اوور کوکنگ کرنے لگتے ہیں. وائی وی شوڈ ڈو دس؟ بیکاز رمضان میں پھر کم کریں گے، یعنی ہم ایکسٹرا اسٹاکس کرتے ہیں فریجوں میں، فریزر میں. اس ویک میں میں نے کباب بنانے ہیں، نیکسٹ ویک میں سموسے، اگلے ویک میں کباب رول، پکوڑوں کا آٹا گوندھ کے رکھنا ہے. کہتے ہیں نا یہ ایکسٹرا کوکنگ آج کے مسلمان میں. آپ بتائیے کہ رمضان کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ ہنسیں گے بات سن کر، کہ کوئی ڈائٹنگ کے لیے کھانا چھوڑنے والا ایک مہینے کے بعد، اور اس مہینے میں خوب کھا لے کیونکہ میں نے اگلے مہینے چھوڑنا ہے. اگلے مہینے چھوڑنے سے پہلے اس مہینے میں اس نے اوور ویٹ کر لیا خود کو، تو فرق کیا پڑے گا؟ اور دیٹس دا ریزن وی کینٹ سی دا افیکٹ آف فاسٹنگ. ہم روزوں کا اثر نہیں دیکھ پا رہے. آپ بھی اس سال یہی جرت کریں، حسبی اللہ کیا ہوگا، اور یقین کریں زیادہ کھائیں گے. میں آپ کو اگر یہ بات پورے یقین سے کہہ جاؤں کہ جو نہیں پکاتے وہ زیادہ کھاتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ جن گھروں میں اتنا پکتا ہے ادھر کتنا ہوگا. ہم تو اتنا پکاتے بھی نہیں، پکانا پڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی اتنی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی کام خود نہیں ہم کرتے، پھر بھی وہ دنیا سے زیادہ آپ کو مل جاتا ہے. مانگتے بھی نہیں آپ کو مل جاتا ہے، آپ کو اس کی کیئر ہی نہیں ہوتی، پھر مل جاتا ہے. تو آج ہے مشکل، مجھے پتا ہے، بٹ یہ ایک مہینہ، یعنی شعبان کا جو مہینہ آنے والا ہے نا، ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فیل کریں، فری کریں. کوئی ایکسٹرا فرائنگ، کوکنگ، دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی چیز کہ جو آپ کے بچوں کے دل سے یا آپ کے دل سے وہ رمضان کی ایک کیفیت، خشیت پیدا کرنا، اور لعلکم تتقون، تقوی وہ لے جائے. کیا آپ اور میں اس دفعہ اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا سکتے کھجور اور پانی کا روزہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے عید کے موقع پہ دیکھا، سوکھی روٹیوں کو پانی میں ڈپ کر کے کھا رہے تھے، اینڈ ہی واز خلیفہ ایٹ دیٹ ٹائم. تو کسی نے کہا، یا امیر المومنین، آج عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹیوں میں پانی ملا کے کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے، ہاں، اس لیے کہ میری عید اس دن ہوگی جس دن میرا رب کہے گا کہ علی جا، میں نے تیری زندگی کی نیکیاں قبول کر کے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا. اٹ شوڈ بی مائی عید ڈے. اب یہ دیکھیں، یہ ان کی باتیں، لوگ ان کو پیوند لگے کپڑوں میں دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے کہ دیکھو یہ بندہ اتنا ہونے سونے کے باوجود پیوند لگائے بیٹھا ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی نظروں میں میرا مقام کیا ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ میں ایسا کریں، میں نہیں کہتی کہ ایسا نہ کرنے والے گناہ گار ہیں، جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں وہ سارے بڑے ایسے نہیں، بٹ وی شوڈ تھنک اباؤٹ دیٹ. کیا سوچ ہے کہ ایک بندے کو ہر وقت دکھی رکھتی ہے؟ کیونکہ ان کے روزے اس طرح کے روزے ہوتے تھے کہ جو ان کو اللہ کے قریب کرتے تھے. سچ بتائیں، کئی بچے میں نے خود بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وی لو رمضان بیکاز وی ایٹ سموسز ایوری ڈے، اگلے دن فرائی چپس. جتنی فرائی چیزیں ہمارے کلچر میں رمضان میں بنتی ہیں، کبھی بنی؟ اینڈ آف رمضان پکوڑے اور سموسے سے دل نہیں بھر چکا ہوتا. اور امریکہ میں اگر آپ رہیں تو روز بریانی. یہاں یورپ میں پلاؤ زیادہ بنتا ہے، امریکہ میں بریانی بنتی ہے. جہاں میں رہ کے آئی دیکھا، ایوری ادر ڈے آپ کو بریانی ملے گی، بلکہ ایوری ڈے کہہ لوں تو غلط نہیں ہے، مسجدوں میں اور افطاریوں میں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ کھانا نہ پکائیں، پکائیں، بٹ ون ڈش. یہ بھی میں نے اس دفعہ کافی دفعہ ٹپ دی ہے، انسٹیڈ آف پکوڑے، میں نے عورتوں کو خود سنا ہے، پکوڑے بنا رہی ہوں، میرا فلاں بچے کی فرمائش ہے، وہ دوسرا کہتا ہے سموسے، تو میں نے چار سموسے بھی فرائی کیے ہیں. میاں صاحب فون کرتے ہیں کبھی، میرے لیے تو ایگ رول رکھنا. اچھا تم جو بھی بنا رہی ہو تو میں باہر سے لے آتا ہوں. یہ نہ کریں، آپ بنائیں پکوڑے، ایک دن میں صرف پکوڑے اور کھجور. अगले दिन में एक एक समोसा और खजूर, तीसरे दिन में आप फ्रूट चाट और खजूर, चौथे दिन में आप कह लीजिए दही भल्ले और खजूर, क्या नहीं मुमकिन? और अगर कोई बच्चा कहता है कि ऐसा नहीं करो जी मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप कहना बेटा कल आज तुम बहन की पसंद का खा लो, कल उसकी पसंद का हम तुम खाना। आप अपने बच्चों को अगर इस रमजान में ये फीलिंग्स दे सकें कि सहाबा के रमजान कैसे थे और पेट पे पत्थर बांध के उन्होंने काम किया, आपको वो लेक्चर याद आना चाहिए ऐसे मौके पे कि इस्लाम का गलबा सहाबा ने जिन जंगों को लड़के किया वो खाली पेट होती थी। क्या था तालूत जालूत का किस्सा? दुनिया पेट भर के जब पेट में आ जाती है ना तो ताकत नहीं रहती। आज हमारी ऑब्स्टिकल्स क्या है आप बताइए, खुद अपने ऊपर लेकर सोचिए कि आज एक जनरल वुमेन को दीन सीखने सिखाने या उसकी खिदमत का वक्त क्यों नहीं मिलता? सिर्फ फराइज तक भी क्यों गए, बल्कि अल्लाह माफ करे कुछ की तो फर्ज नमाजें क्यों लेट होती हैं? कितनी नमाजें पांच में से एक दिन में वक्त पे पढ़ी जाती हैं? आज सुबह मैंने एक छोटी सी शेयरिंग सुनी, बड़ी अच्छी थी, पढ़ी है, पढ़ने के बजाय मैं आपको सुना देती हूँ। ये बेसिकली इजिप्ट से कोई शेयरिंग चल रही थी कि एक स्टूडेंट ने अपनी टीचर का एक अमल था तो वो सुनाया। उसने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्राइटेरियन रखा हुआ और वो कुरान पाक में सूरह ताहा में ही है कि मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे बुलाया था और एक अपॉइंटेड टाइम था। मूसा अलैहि सलाम उस वक्त से जल्दी चले गए, जो वक्त अल्लाह ताला ने उनको दिया था उससे जल्दी चले गए। तो बाद में जब अल्लाह ताला ने पूछा कि मूसा आप जल्दी क्यों आ गए, तो कहा अल्लाह ताला इसलिए कि आप खुश हो जाएंगे। बस अगर दर्स में आपको 11 बजे का टाइम दिया है तो फिर आप अगर 10:45 या 10:30 आएंगे तो कोई बुरा तो नहीं मनाएगा ना। हाँ आप 11 के बाद आएंगे तो बाज़ दफ़ा आपको खुद भी ऑकवर्ड लगेगा कि मैं लेट क्यों हो गई। तो उस औरत ने जो टीचर थी एक मौलिमा थी, उसने ये क्राइटीरियन बना लिया कि मैं अपनी जिंदगी में इस आयत पर अमल करूंगी। क्या? और वो क्या है कि जहां जब भी कभी नमाज का वक्त आएगा मैं जो कर रही होंगी मैं उसको वहीं छोड़ दूंगी। ये इसका मामूल था। अब इसी मामूल के तहत यानी इसी रूटीन के ऊपर एक दिन वो खाना बना रही थी, उसके हस्बैंड का उसको मैसेज आया, महविश महूश कुछ इस तरह की एक डिश होती है अरब लोग बनाते हैं, जो ग्रेप स्लीव होते हैं ना, अंगूर के जो पत्ते होते हैं ना, उसके अंदर कच्चे चावल और कुछ मसाले भरते हैं और उसके बाद फिर उसको वो उसमें रैप करके तो उसको काफ़ी हल्की आँच पर पकाते हैं, काफ़ी टाइम टेकन होता है। तो कहते हैं कि ये जब खाना पका रही थी ना तो पकाने लगी तो इसके हस्बैंड ने कहा कि आज तुम ये डिश बनाओ। खैर इसने उसको शुरू किया, करती रही। अब उसमें एक एक पत्ते को रोल करना होता है। शी वॉज डूइंग दैट, सिर्फ तीन पत्ते बाकी रह गए थे जिसमें इसने रैप करके फिर उसको ओवन में डाल देना था। उतने में अजान शुरू हो गई। अब इसके पास क्वेश्चन क्या था कि मैं ये फिनिश कर लूँ या मैं नमाज पढ़ लूँ। इसने अपनी आदत के मुताबिक सब छोड़ा, जाए नमाज पर खड़ी हो गई और नमाज पढ़ने लग गई। थोड़ी देर बाद क्या होता है, अब सीन पलटता है, उसका हस्बैंड घर आता है। जब घर आता है तो देखता है कि वो नमाज पढ़ रही है और सजदे में, और साथ ही टेबल पे कुछ कच्चे रैप्स पड़े हुए हैं और तीन जो है वो बगैर कुक किए हुए भी पड़े हुए हैं। उसने एकदम उसको कहा कि खाना क्यों नहीं तैयार हुआ, नमाज तुम बाद में भी पढ़ सकती थी, क्या फर्क पड़ता है? जैसे वो बंदा गुस्से में बोल रहा था कि ये तीन पत्ते रैप करके अगर ओवन में रख के नमाज पढ़ रही होती तो अब तक ये भी कुक हो चुके होते, तुम्हारी नमाज होती। लेकिन वो क्या देखता है कि उसकी सारी बातों का बीवी को कोई असर नहीं होता। खैर वो उसके करीब जाता है, उसको आवाज़ देता है, पता क्या चलता है कि सजदे में उसकी डेथ हो चुकी है। और उसने यही बात कही कि यानी जो इसका मैसेज था कि अगर वो डिले कर देती अपनी नमाज को, सिर्फ वो तीन रोल करते, और पक्की बात है रोल करने से कुछ नहीं था आना, फिर कहना था ओवन में भी डाल दूं, अच्छा साइड भी पलट दूं और ये और मेरे मियाँ ने आना है, तो वो इतनी खूबसूरत मौत तो नहीं मरती ना। तो ये जिंदगी का क्राइटेरियन बना है, मुझे आपको नहीं पता। और वो कह वाजिल तू इलई का रब्बी लितरदा, मैं तो जल्दी आ गया तेरी तरफ है मेरे रब ताकि तू मुझसे राजी हो। नियत करें, आज से नियत करें कि हमने रमजान में भी वक्त जाया नहीं करना और अब भी वक्त जाया नहीं करना, क्योंकि नहीं पता कल क्या होगा। एक और वाक्य भी अरब मुल्क का ही था वो, कि एक बच्ची थी जिसकी शादी थी, कितना पैसा दे दिलाकर जब वो तैयार हुई, इतने में मगरिब का वक्त हो गया तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं नमाज पढ़ूंगी। तो माँ ने कहा तुम इस कपड़े और इस हाल हुलिये में कैसे पढ़ोगी, चलो चलो सब लोग वेट कर रहे हैं। उसने कहा नहीं मैंने अल्लाह को मिलना है, मैंने नमाज पढ़ी। उसने कहा अच्छा चलो जाओ जल्दी पढ़ो। उसने कहा जल्दी पढ़ो नहीं मेरा वजू नहीं है। अब तो माँ के दिल पे बिजली गिरी होगी कि ये क्या जुल्म हो गया। और उसने कहा कि वजू नहीं है तो क्या होगा, मुंह धोओगी कहाँ, कहा फिर लोग तुम्हें देखेंगे कैसा लगेगा, खराब हो जाएगा मुंह। उसने कहा कि मेरा अल्लाह मुझे देखेगा तो क्या होगा। उसने मुंह धोया, वजू किया, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने में जितना भी वक्त लगा उसके बाद उसको दोबारा जब हॉल में ले जाने लगे, स्टेज पे जाने से पहले एकदम गिरी और उसकी जान चली गई। और माँ क्या कह रही होगी, अच्छा बाद में पढ़ लेना, घर जाके पढ़ लेना, अब ये कोई वक्त है। असल ये है वो चीज जिसको कहते हैं किस काल लहू रब्बु अस्लिम काल अस्लम तुल रब्बिल आलमीन। तो भारी खानों से बचना है इंशाल्लाह। देखिए हमने एक उम्मत तैयार करनी है, अल्लाह ने आपके मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है, हमें एक ऐसी स्ट्रांग नेशन डिवेलप करनी है जो आज के दौर के फितनों से निपटे। और अगर हमारे बच्चों ने थोड़े से टाइम डिफरेंस के साथ खाना चेंज कर लिया, कुरान मामूल से ज्यादा पढ़ लिया, नफिल पढ़ लिए, मस्जिद में जमात पढ़ ली, ये सब तो होगा, बट वो स्पिरिट नहीं आएगी कि हमने दीन को सर्व करना। फौजियों को भूखा रखते हैं, आपको पता, 11 महीने उनको अलर्ट रखते हैं, फिर कभी एक दफा दुश्मन के आगे जाना पड़ता है ना, वजह क्या, तैयारी करनी है। फिर इसके बाद आप देखिए एक और चीज जो आज का मुस्लिम बहुत ही करता हुआ दिखता है, मैं एक कड़वा जुमला बोल दूं, नेकी के नाम पर गुना, और वो क्या है, एलेबोरेटेड इफ्तारिस। मेरी इस बात से आपके जहन में कई दस्तरखान खुल जाएंगे, बड़ी बड़ी इफ्तारियां, और नाम क्या है, रोजा खुलवाने से सवाब होता है। किसका, कितनों का, 50 लोगों की इफ्तारी है तो उसमें 25 रोजेदार है, 25 बेरोजा है, और जो रोजेदार है उनमें से भी 10-20% ऐसे हैं कि जो मगरिब भी नहीं पढ़ने जाते हैं, और वो कहते हैं खाना दो जी, मुझे शुगर हो रहा है, ये हो रही है, वो हो रही है। अब आप बताइए कि, और उससे भी बड़ा जुल्म जो आज के मुस्लिम से हो रहा है कि आप दूसरों का रोजा रखवाने के लिए अपना रोजा भी छोड़ते हुए देखा है। कई सिस्टर्स वेट कर रही होती हैं कि वो रोजे छोड़ें और फिर उसके बाद इफ्तारी करें, और फिर अगला जुल्म जो आज के मुसलमान से होता है उस इफ्तारी में कि मिक्सिंग, मर्द भी औरतें भी, फैमिली है भी, ये घर के लोग हैं, छोटा घर है, मर्द भी ले रहे हैं औरतें भी ले रही हैं। अगर आप आज इफ्तारी ना रखते तो कम से कम लोग आज इस गुना में तो आपसे, आपके जरिए शामिल ना होते। फिर इसमें एक और जुल्म क्या है कि नमाज चली जाती है, मगरिब चली जाती है, चलो वो लेट करके पढ़ ली घर में, 80% लोग जब किसी फैमिली इफ्तारी में गए होते हैं तो वो तरावी पे नहीं जा पाते, वो हम तो उस मस्जिद में जाते थे वो तो दूर है, अच्छा हम घर में पढ़ लेंगे। फिर उससे बड़ा ज्यादती क्या है कि इफ्तारी तो हो गई सब होगी, उसके बाद लंबा बैठना, और हो सकता है अगले दिन की, पास कई लोग कहते हैं अब सहरी करके भी जाए, खुशू खत्म हो जाता है। ये नहीं करना, ये आज के मुसलमान की बिदात है, नेकी नाम भी समझ के करें लेकिन ये हमारी सोशल बिदात है। अल्लाह के नबी सोशलाइजिंग खत्म कर देते थे। रह गई बात, आपको सवाब चाहिए, आपने अपने घर में 50 की इफ्तारी की, आपका 200 पाउंड लग गया, आप वो 200 पाउंड जो है किसी भी ऐसी जगह पे इफ्तारी करा दीजिए जहां वाकई कोई ऐसे लोग आते हैं लास्ट मोमेंट मस्जिद में आते हैं, यहां भी मुझे लगता है काफी होता है मस्जिदों में, उसमें भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं इसके भी खिलाफ हूँ। माले मुफ्त दिले बेरहम, मैंने ऐसे इफ्तारी के डब्बों को ब्लैक बैग्स में जाते देखा कि दिल कटता है, मैं तो नहीं दूं कभी इधर, वल्लाही अल्लाह माफ करे मुझे, मुझे पता लग जाए कि मैं आपको डोनेशन दूंगी और आप उसकी एक पैनी जाया करेंगे, मैं कभी भी नहीं आपको दूंगी, मैं उधर दूंगी जो मेरी एक एक पैनी को कबूल करेगा। आपको खाना दूं और आप आधा खाएं आधा फेंक दें, मैं कभी नहीं दूंगी, अगले दफा मैं वहां दूंगी जो चूम चाट के खा लेगा। मैं आपको कोई कपड़ा दूं, आप कहते हैं छोड़ो बेकार है छोड़ दो, नहीं मैं नहीं दूंगी आपको, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं कर सकती अपनी चीज को। आप ऐसी इबादत करें जिससे फायदा हो। आप देखिए कि हमारे अपने मुल्कों में बड़े गरीब हैं, बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है ना, ऐसे मदरसे पाकिस्तान में जहां तालिब इल्म रहते हैं, खाना खिलाने के साथ जो ही मैं सोचूं मेरे जहन में तालिब इल्म आते हैं। क्यों, आप देखिए ना कि हम खाना खाते हैं उसके बाद नेकियां भी, अच्छे काम भी हुए, बुरे भी हुए, लेकिन एक बंदा जो मदरसे में है या वाकई वो कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके उस खाने की एनर्जी तकरीबन 2-4 दिन तक बॉडी में रहती है। उस दौरान वो जितना कुरान पढ़ेगा, जितनी नमाजें पढ़ेगा, जो दीन का काम करेगा, जो सोशल वर्क करेगा, वो आपको फायदा होगा। तो जाया ना करें हम अपने वक्त को और अपनी चीजों को। फिर उसके बाद आप देखिए कि आज के मुसलमानों की एक रमजान में एक और बहुत चीज है जिस पे मुझे वाइंड अप कर देना चाहिए, चीजें और भी बहुत सी हैं, और वो क्या है, ईद की तैयारी। बहुत सारे मुसलमान आज भी ये सोचते हैं कि रमजान ईद की तैयारी का महीना है, हालांकि एक जुमला लिख लें कि रमजान ईद की नहीं आखिरत की तैयारी का महीना है, हम ये भूल जाते हैं। और ईद की तैयारी के नाम पे बाहर जाना, चूड़ियाँ पहनना, जोड़े लेना, दर्जियों के समूमारी करना, मैचिंगें ढूंढना, और ईद के जोड़े के नाम पे कितनी कबाहते हैं। क्या ईद अचानक आई? पहले भी पता था आएगी। आप उसको लेकर तैयार जोड़ा पहले बना ले, अभी बना ले। मैं आप सबको कह रही हूँ, अगर वाकई सुन्नत समझ के आप नया सूट ईद का बनाते हैं, अब बना लें और बना के उसको अलमारी में रख दें। चूड़ियाँ पहनती हैं आपकी बच्चियाँ, आप पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। बट रमज़ान के दिनों में शॉपिंग पे जाना, और अब तो शॉपिंग पे कम जाना और नेट से सर्च कर करके जोड़े देखना करना, ये टाइम वेस्टिंग होगी। फिर इस तरह इंसान वो लेता नहीं है। जैसे मैंने इन्हीं दिनों में ये चीज़ फील की है लेक्चर्स के दौरान, और कोशिश भी की है कि इसको फील करवाऊँ कि रिजल्ट्स क्यों नहीं निकल रहे। मुझे 20, 25, 23, 50, 40, हर एक अपनी एज को समझे, कितने साल हो गए रोजे रखते हुए, बट मेरी शख्सियत क्यों नहीं ढली, एक रोजेदार वाली साइमा में क्यों नहीं बनी, मेरे अंदर वो चीजें क्यों नहीं आई। वजह यह है कि हमारे रोजे स्पिरिचुअल रोजे नहीं होते, हम उसको नहीं लेके पाते। फिर इसी तरह से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें आज के मुसलमान की दिखेंगी। हाँ, अच्छी चीज़ें बहुत हैं। अभी भी उम्रे पे जाने का शौक होता है, रमज़ान में लोग जाते हैं, हरम में जाकर देखिए, तरावियाँ होती हैं, और हरम के अंदर और ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी में जो इफ्तारी का सामान होता है, बहुत प्यारी सुन्नत है, कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी ऐसी जगह अपना हिस्सा डलवा दें जो है, तो मैं ये नहीं कहती कि हम मुसलमान रमज़ान में ख़राबी करते हैं, बहुत अच्छे काम भी होते हैं। मसलन माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में मस्जिदें भरी लगती हैं। ये अलग बात है कि वो चांद के बढ़ने घटने के साथ कुछ दिन उसमें भी डाउनफॉल आ जाता है, लेकिन आखिरी दिनों में हम फिर उठ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में मैं कहती हूँ मस्जिदें आपस में बातें करती होंगी, सुना क्या हाल है, आजकल भरी हुई हूँ। अगला पूरा 11 महीने हो सकता है कि इसमें से बहुत ही कम लोग आते हों, ये अल्लाह का शुक्र है। फिर दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है माशाल्लाह आज के मुसलमानों के अंदर रमज़ान के अंदर भी, वो क्या है कि 80% लोग खुराफात देखना छोड़ देते हैं, टाइम कम वेस्ट करते हैं, घड़ी पे नज़र रखते हैं। अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब कभी हमें पता था तो उस वक्त टीवी चैनल बहुत सारी नशरियात बंद कर देते थे और कुरान और तिलावत चलता है। अगर आपके घरों में इस साल भी रमज़ान में कोई प्राइम टाइम, कोई फन टाइम आए तो उसको बंद कर दें, ये भी जुल्म है। किसी ने लास्ट ईयर का एक क्लिप भेजा था कि रमज़ान जस्ट मगरिब तक होता है, मगरिब टाइम के बाद क्या प्राइम टाइम, और वो प्राइम टाइम के नाम से एक शो करते थे, और मैंने खुद देखा उसमें और लोगों से भी खबर मिली कि हर हद टूटती हुई दिखती है इस्लाम की। सिर्फ एक रमज़ान का महीना भी सब्र नहीं हो पाता, इससे बचे। तो इसके लिए आप लोग जहन में यही चीज रखें कि ये सब कुछ जो है ना, हमने सही रखना है,